कहानी 54 भाग 4 इफिसियों की अर्तिमिस देवी। परमेश्वर का वचन सामर्थ के साथ बढ़ता और मजबूत होता जा रहा था। फिर इसके बाद पौलुस ने अपने मन में विचार किया कि वह मकिदुनिया और खाया से होकर यरूशलेम को जाए और वहां से रोम को। इसलिए पौलुस ने अपनी सेवा करने वालों में से तिमोथियस और इरातुस को मकिदुनिया में भेजा और खुद आसिया में ही कुछ दिनों तक रहा। उसी समय यीशु में विश्वास करने वालों को लेकर वहां बड़ी खलबली मच गई, क्योंकि तिमित्रस नाम का एक सुनार, जो चांदी का कारीगर था, जो आर्तिमिस देवी की मंदिर की मूर्तियां बनाया करता था और जिसका कारोबार बहुत बड़ा था, और इसी कारीगर ने अपने सारे कारीगरों को इकट्ठा करके उनसे ये कहा, भाइयों, आप तो इस बात को समझते ही हैं कि हमें इतना सारा धन इसी काम से मिलता है, और आपने ये देखा और सुना ही होगा कि ना केवल इफिसुस में बल्कि सारे आसिया प्रदेश में भी इस पौलुस ने बड़ी संख्या में लोगों को ये कहकर भरमा दिया है कि हाथ से बनाए गए देवी देवता कुछ नहीं होते। अब खतरे की बात ना केवल ये है कि हमारे काम का मान सम्मान जाता रहेगा, बल्कि ये भी कि महान देवी आर्तिमिस का मंदिर भी बेकार साबित हो जाएगा, और वो जिसकी पूजा ना केवल सारा आसिया प्रदेश बल्कि पूरी दुनिया करती है, उसको उसके विशाल पद से गिरा दिया जाएगा। उस कारीगर की इस बात को सुनते ही बाकी कारीगर भी क्रोध से भर गए और वे सब एक साथ चिल्ला उठे, इफिसुस नगर की देवी आर्तिमिस ही महान देवी है। इस तरह सारे नगर में एक बड़ा कोलाहल मच गया और वे सब एकजुट होकर मकिदुनिया नगर से आए पौलुस के साथी गायास और अरितास्खुस को घसीटते हुए रंगशाला की ओर भागे। भीड़ में से कोई कुछ चिल्ला रहा था तो कोई कुछ और। इस तरह सारी भीड़ में गड़बड़ी मची हुई थी। बहुतों को तो यही नहीं मालूम था कि वो वहां इकट्ठा किस लिए हुए हैं। बहुतों ने सिकंदर को, जिसे यहूदियों ने खड़ा किया था, भीड़ में से आगे बढ़ाया, और सिकंदर अपने हाथ से इशारा करते हुए कुछ कहने का प्रयास कर रहा था। मगर जैसे ही उन लोगों को यह मालूम हुआ कि सिकंदर यहूदी है, तब सारी भीड़ लगभग 2 घंटे तक एक ही शब्द में चिल्लाती रही, इफिसुस नगर की देवी आर्तिमिस ही महान देवी है। तब भीड़ को शांत हो जाने पर नगर के हाकिमों ने उनसे कहा, हे इफिसियों, आखिर ये बात कौन नहीं जानता कि इफिसियों का नगर महान आर्तिमिस और उसी मूर्ति का रक्षक है जो आकाश से उतरी है। और जब ये बात सच है कि इस बात पर कोई वाद विवाद नहीं हो सकता, तो सही यही होगा कि आप सब शांत रहे और बिना सोचे समझे कुछ भी ना करें। आप जो इन लोगों को यहां लेकर आए हैं, ये ना तो मंदिर के लुटेरे हैं और ना ही हमारी देवी की निंदा करने वाले। इसीलिए अगर दिमेत्रियुस और उसके साथी कारीगरों को इनके बारे में कोई आपत्ति है, तो न्यायालय खुला है और न्यायाधीश भी सामने हैं, वे उनके सामने अपने आरोप पेश करें। तब दिमेत्रियुस ने सोचा कि आज किस बलवे के कारण हम पर दोष लगाए जाने का डर है, इसलिए कि इसका कोई कारण नहीं है और इसलिए हम इस भीड़ के इकट्ठा होने का कोई जवाब भी ना दे सकेंगे। तब ये कहकर उन्होंने सभा को विदा किया। इस तरह नगर में हुल्लड़ शांत होने पर पौलुस ने शिष्यों को बुलवाया और उन्हें समझाया, और फिर उनसे विदा लेकर मकिदुनिया प्रदेश की ओर रवाना हुआ।